हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज बहुत विशेष दिन है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य पार्षद हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो संगी हैं स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, गौरांगिर संगी गना नित्य सिद्ध करे माने, कि गौरांग महाप्रभु के जो नित्य संगी हैं वो वास्तव में मुक्त है। जब वृंदावन दास ठाकुर ऐसे महान भक्तों का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि महाप्रभु के भक्तों का वर्णन करना एक सर्वसाधारण जीव के लिए असंभव है। इसी कारण से वृंदावन दास ठाकुर गौरांग महाप्रभु के चरणों में गिरते हुए प्रार्थना करते हैं। वो लिखते हैं, भक्त संगे पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार जिवाय स्मुरुक गौर चंद्र अवतार। मैं सारे डिवोटीज के चरणों में गिरता हूं और उनकी कृपा की आकांक्षा रखकर महाप्रभु को नमस्कार करता हूं ताकि मेरे जिह्वा से चैतन्य महाप्रभु और उनके जो प्रिय भक्त हैं उनका गुणगान स्फुरित हो जाए। तो एक भक्त के लिए सबसे आनंददायी वस्तु क्या है कि जब उसको मौका मिलता है ऐसे महान आचार्यों का गुणगान करने का। और वास्तव में देखा जाए भक्तिमय जीवन में हमें हमेशा ये भाव रहता है अपना गुणगान सुनने का। तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर रहा है जिसके हृदय में दूसरे भक्तों के प्रति एप्रिसिएशन का जो भाव है उजागर हो रहा है स्वाभाविक रूप से। क्योंकि जैसे जैसे भगवत भक्ति में हम दिन बिताते हैं साल बिताते हैं तो हमारे दिमाग के पीछे एक भावना बनी रहती है, हम हर चीज के लिए रिकॉग्नाइज्ड होना चाहते हैं, एप्रिसिएशन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारा गुणगान करना भूल जाता है तो सबसे अधिक दुख हमें महसूस होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के इन भक्तों का वर्णन करने के लिए उनका गुणगान करने के लिए वृंदावन दास ठाकुर भक्तों से आशीर्वाद की कामना करते हैं ताकि वो परम शुद्धि अनुभव करे या परम शुद्धि को प्राप्त करे। यदि कोई कहे कि सबसे अधिक आनंद और सबसे अधिक दुख किसे होता है, जब इस संसार में कोई वैष्णव प्रकट होता है या इस संसार से कोई वैष्णव अप्रकट हो जाता है, नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं अपने प्रार्थनाओं में लिखते हैं, ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपद। तो ये जो पृथ्वी देवी है, जब कोई वैष्णव इस संसार में धराधाम में प्रकट होता है कृष्ण के आदेशों पर, तो पृथ्वी माता उल्लसित हो जाती है, अत्यधिक गर्वित और आनंदित महसूस करती है। लेकिन जब वैष्णव और जब वैष्णव चलते हैं इस पृथ्वी पर तो उसके शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं, गदगद हो जाती है उनके चरण कमलों का स्पर्श स्वीकार करने के लिए। लेकिन जैसे ही वैष्णवगण इस जगत को छोड़कर चले जाते हैं तो सर्वाधिक वेदना दुख अनुभव करती हैं पृथ्वी देवी। हाँ, क्योंकि उसके लिए ये जो डिवोटीज है वैष्णवाज है वो रत्न है, अमूल्य रत्न है पृथ्वी देवी के। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु को जब भी मौका मिलता था अपने पार्षदों का या भक्तों का गुणगान करने का, तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, जब हरिदास ठाकुर के बारे में चैतन्य महाप्रभु वर्णन करने लगे तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, हरिदास गुण कहते प्रभु हैला पंचमो, कहते कहते प्रभु पाड़े महासोक। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के बारे में बोलना शुरू किया तो उनके पांच मुख हो गए। इतना अधिक आनंद चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे थे और हमारा बिल्कुल उल्टा है, हमारा एक मुख भी बोलने का प्रयास नहीं करता, वैष्णव का गुणगान नहीं करना चाहता। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु दुखी होकर कहते हैं हरिदास ठाकुर को कि हरिदास तुम इस संसार से चले जाओगे और वास्तव में मेरे लिए सर्वाधिक आनंद का क्षण कोई है तो वो तुम्हारा संग है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु मैं तो एक छोटा सा जीव हूं, इस संसार में कोई चींटी मर जाती है तो किसको क्या फर्क पड़ता है, आपके एसोसिएशन के लिए तो बड़े बड़े डिवोटीज हैं, मेरी क्या आवश्यकता है आपको। महाप्रभु रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में हरिदास आचिल पृथ्वीर शिरोमणि, हरिदास ठाकुर क्या है इस पृथ्वी के शिरोमणि है, तहा बिना रत्न शून्य हैल मेदिनी, उनके बिना ये जो मेदिनी है पृथ्वी देवी है रत्न से शून्य हो गई है। ऐसा वक्तव्य चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के बाद बोलते हैं। तो पृथ्वी देवी सर्वाधिक आनंद का अनुभव करती है और सबसे अधिक दुख होता है उसे जब वैष्णव इस जगत को छोड़कर चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये नरोत्तम दास ठाकुर है। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे आचार्य है जिनका स्मरण करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें रोज एक प्रार्थना दी है, और वो कौन सी प्रार्थना है, गुरु वंदना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु को एक ही चिंता थी जब वो नीलाचल चले गए, उनको क्या चिंता थी कि मेरे जाने के बाद उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा कि हे नित्यानंद जब तक तुम इस संसार में हो तब तक इस संसार से कृष्ण प्रेम दूर नहीं हो सकता, कृष्ण प्रेम हमेशा बना रहेगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद और मेरे जाने के बाद मुझे अत्यधिक चिंता है कि ये जो प्रेम फल में लेके आया हो अपने साथ, गोलो केरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, प्रेम नाम संकीर्तन रूपी ये जो महाधन में अपने साथ लेकर आया हो, और मैं चाहता हूं कि इसका जो वितरण है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअसली होते रहे आने वालों जीवों के लिए। तो महाप्रभु की चिंता थी, इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने से पहले उन्होंने इन तीन भक्तों के बारे में बोला था। एक थे नरोत्तम दास ठाकुर और दूसरे थे श्रीनिवास आचार्य और तीसरे थे कौन, श्रील प्रभुपाद। तो चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, इन ग्रंथों में हम ये सब वर्णन श्रवण कर पाते हैं। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य बड़ा अद्भुत है। जैसे कृष्ण के जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म भी बड़ा अमेजिंग है और उनके कार्यकलाप भी अद्भुत है और उनका इस जगत से चले जाना भी विस्मयकारी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया कछवा में, और संन्यास ग्रहण करते ही केशव भारती से उन्होंने डिजायर व्यक्त की नित्यानंद प्रभु चंद्रशेखर आचार्य आदि के साथ कि अभी वो अवंती ब्राह्मण का स्मरण करते हुए, अवंती ब्राह्मण के जो वचन है उनका स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, हाँ वृंदावन जाना चाहता हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको घुमा फिरा के शांतिपुर ले आते हैं, फिर अपनी माता सची माता के आदेश अनुसार चैतन्य देव हाँ पुरी में निवास करते हैं, और फिर उनको वो भाव उजागर हुआ वृंदावन जाने का। फिर वो वृंदावन के लिए निकले, ये दूसरा उनका निकलने का प्रयास था। उन्होंने कहा मैं वृंदावन जाऊंगा लेकिन बंगाल होते हुए जाऊंगा, क्योंकि वहां मेरी दो माताएं निवास करती हैं, एक गंगा माता गंगा देवी जिनमें स्नान कर सकता हूं, और दूसरा है सची माता। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना यात्रा शुरू किया, और वो जो वृंदावन यात्रा है चैतन्य महाप्रभु का, वृंदावन तो वो जाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन यात्रा का बहाना बनाकर अपने विशेष डिवोटीज को मिलना चाह रहे थे, और वो थे श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु जब निकले तो जगन्नाथपुरी में ऐसा कोई भी भक्त नहीं था जो चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना नहीं चाह रहा था, हर एक भक्त निकल पड़ा। और जहां जहां महाप्रभु जाते थे राजा प्रताप रुद्र ने अरेंजमेंट ये व्यवस्था की थी वहां उनके लिए रहने के लिए है, और उनका स्नान आदि और उनकी सेवा के लिए सारा इंतजाम कर लिया था। तो चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते राम के लिए आते हैं, और राम के लिए जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं रूप सनातन का उद्धार करते हैं, उनको दीक्षा प्रदान करते हैं उस तमाल वृक्ष के नीचे, और फिर चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि नहीं, उनको स्मरण आता है सनातन गोस्वामी के वाक्यों का उद्गारों का। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप जो वृंदावन जा रहे हो वृंदावन जाने का ये प्रॉपर विधि नहीं है, ये परिपाटी या प्रोसेस नहीं है वृंदावन जाना, आप तो एक सर्कस वाले के भांति इतना सारा इतने सारे लोगों को जा रहे हो, वृंदावन जाना कैसे जाना चाहिए, अकेले या कोई एक या दो अपने साथ हो बस। तो महाप्रभु को ये विचार बड़ा लग गया, फिर वो कनाई नटशाला गए। कनाई नटशाला आज भी बड़ा सुंदर स्थान है गंगा नदी के तट पर। तो कनाई नटशाला वो कनाई का ग्राम है, कनाई कृष्ण की कई सारी लीलाएं वहां हुई है। तो ऐसे स्थान में महाप्रभु जाते हैं, तमाल वृक्ष को देखकर उसका आलिंगन करते हैं और कृष्ण के विरह में रोने लगते हैं, और फिर वहां से नित्यानंद प्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु वापस निकलते हैं। अभी सामने चलते चलते पद्मा नदी जो पद्मा रिवर है उसको क्रॉस करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब उस स्थान में आए और महाप्रभु ने कहा कि बस इसी स्थान से मैं कहां नहीं जाना चाहता, यहां ही बैठे रहना चाहता हूं। तो नित्यानंद प्रभु कहते आपने तो संन्यास लेकर नवद्वीप को छोड़ा है, फिर नीलाचल को भी छोड़कर वृंदावन जाना चाहते हो, लेकिन अचानक ऐसे क्या हुआ कि अभी इस स्थान में बैठकर आप कहते हो कि मैं कहां नहीं जाना चाहता। महाप्रभु ने कहा व्यक्ति को उस स्थान में रहना चाहिए जहां उसका मन शांति अनुभव करता है, जहां उसे चंचलता आदि महसूस होती है वो स्थान उस व्यक्ति के रहने के लिए योग्य नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां बैठते हैं और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि लेकिन आपको तो नीलाचल जाना चाहिए वापस। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उस स्थान में उस रात्रि के लिए रुकते हैं, और फिर दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के संग में सुबह सुबह कीर्तन शुरू करते हैं उस नदी के तट पर, और वहां नित्यानंद प्रभु के कंधे पर हाथ देते हुए महाप्रभु रोने लगते हैं, और रोते हुए चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से गर्जना करने लगते हैं। और क्या गर्जना थी, वो वास्तव में कृष्ण के तीव्र विरह को अनुभव कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने सारे कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रकट किया और उन भक्तों के बीच में अचानक गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु उनको उठा नहीं पा रहे थे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मथुरा मथुरा, ललिता विशाखा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे और ये सुनकर सारे भक्तों का हृदय फट रहा था कि क्या हो गया चैतन्य महाप्रभु को, जो इतना जोर से विलाप कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी लगता है कि इस गांव में, इस स्थान में कृष्ण प्रेम की बाढ़ आने वाली है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं और फिर से रोने लगते कि हे राधा, हे ललिता, मेरा शरीर जल रहा है कृष्ण के विरह में। और वो कहने लगे, हे ललिता, हे विशाखा, आप मुझे जल्दी ले चलो, मैं श्याम सुंदर कृष्ण का सौंदर्य का आलोकन करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से महाप्रभु वृंदावन के भाव में वहां जोर जोर से रोने लगे और उनके विरह को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। और उसी क्षण नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, मूर्छित हुए चैतन्य महाप्रभु के कानों के पास गए और जोर से उन्होंने उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से बाह्य दशा में आते हैं और वो याद आता है कि मैं यात्री हूं, मुझे वापस नीलाचल जाना है, यहाँ पद्मा नदी के तट पर रहने के लिए नहीं बना हूं मैं, या यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अचानक जैसे उठते हैं फिर से कीर्तन शुरू हो जाता है। जैसे कीर्तन शुरू होता है, चैतन्य महाप्रभु अभी मथुरा मथुरा, ललिता विशाखा, मुरलीधर है मेरे प्राणनाथ आदि शब्दों को नहीं बोल रहे थे, अभी केवल एक ही शब्द उच्चारित कर रहे थे और वो था नरोत्तम नरोत्तम, बोलिए। चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से नरोत्तम नरोत्तम का उच्चारण करने लगे और किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और नरोत्तम कहते कहते वो नित्यानंद प्रभु का आलिंगन कर रहे थे और निरंतर उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जिनके कारण उनका पूरा देह भीग जाता है। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अरे, मैं ये सोच रहा हूं कि कौन है ये नरोत्तम, शायद कोई महापुरुष प्रकट होने वाला है और ऐसे महापुरुष का संग लाभ मैं भी करना चाहता हूं। किसने इच्छा व्यक्त की? नित्यानंद प्रभु ने। तो स्वयं नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण प्रेम के भंडार है, चैतन्य महाप्रभु के लिए सर्वाधिक अनुराग किसके हृदय में है तो नित्यानंद ठाकुर है, नित्यानंद प्रभु है। तो ऐसे नरोत्तम के बारे में जब चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से रोदन कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु रुक गए। उन्होंने कहा, नित्यानंदा, यहाँ सामने ही देखो एक विशेष स्थान है, उस स्थान का नाम है गडेरहाट। गडेरहाट एक परागना है जहां खेतुरी नाम का ग्राम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंदा, कि एक बार भी कोई व्यक्ति इस स्थान का विजिट करता है तो उस स्थान से वो वापस नहीं जाना चाहता, वो उस स्थान में ही निवास करना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि मैंने तो कृष्ण प्रेम का वितरण करके सारे संसार को डुबो दिया और मैं जाने के बाद भी मेरी ये इच्छा है कि आने वाले दिनों में भी सारा संसार कृष्ण प्रेम की भावना में या कृष्ण प्रेम के रस में डूब जाए। और इसी कारण से मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो स्थान है यहां कृष्ण प्रेम रखना चाहता हूं ताकि इस स्थान से कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण भावना है, सारे जगत में वितरित हो। चैतन्य महाप्रभु की ये चिंता बहुत बड़ी थी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये वचन है। महाप्रभु का क्या भावना है, महाप्रभु का सपना क्या है, मैं वैसे ही सोच रहा था कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना सपना होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का सपना क्या है? मेरा सपना सबका जपना। ये चैतन्य महाप्रभु का सपना है। महाप्रभु चाहते हैं कि इस संसार का हर जीव कृष्ण के नामों का उच्चारण करे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भावना, ये मूड, ये इच्छा नित्यानंद प्रभु के पास व्यक्त की और नित्यानंद प्रभु को कहा कि नित्यानंदा, तुम्हारा जो प्रेम है मैं देखता हूं कि तुम मेरे लिए सर्वाधिक रोदन करते हो, मेरे विरह में सदा रहते हो और तुम्हारा मेरे प्रति सबसे अधिक प्रीति या प्रेम है, और उसी प्रीति को, उसी प्रेम को, उसी भावना को मैं नरोत्तम के लिए, नरोत्तम दास के लिए क्या करना चाहता हो, रखना चाहता हो उसी प्रेम को। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उस दिन अपने सारे कीर्तन मंडली को जाकर ले जाकर बहुत तुमुल कीर्तन करते हैं, और फिर दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह अपने जब कीर्तन हो रहा था तो कीर्तन को रोककर चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी में अपना चरण डाला, डालते ही उसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। वहां के जो निवासी थे, गांव वाले थे, उन्होंने सोचा, अरे ये तो बारिश का समय नहीं है, वर्षा ऋतु नहीं है, लेकिन इतनी बाढ़ कहां से आ रही है? सारे जगहों में, चारों दिशाओं में सबको डुबो रही है ये जो बाढ़ है। फिर सबने देखा कि चैतन्य देव और नित्यानंद प्रभु उस पद्मा नदी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने प्रवेश किया, मूर्तिमान पद्मा नदी क्या होती है, उनके समक्ष खड़ी हो जाती है। तो ये गंगा नदी है, गंगा की कई धारा आगे बढ़ती हो जाती है और जब बांग्लादेश में जाती है ये धारा तो उसको पद्मा नदी कहते हैं। तो जब ये पद्मा नदी में चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही उसमें कई सारे तरंगे उठने लगी, वो स्वयं व्यक्त हो गई, तो चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु जो ये कृष्ण प्रेम की धरोहर है उस पद्मा नदी के पास रखते हैं और उनको कहते हैं कि आगे चलकर एक महान ठाकुर नरोत्तम आएंगे, उनको क्या करो, एक कृष्ण प्रेम प्रदान करो। सोचो, चैतन्य महाप्रभु जिस व्यक्ति के बारे में इतना सोच रहे हैं, जिनके लिए इतना प्रेम स्टोर करके रख रहे हैं, कितना प्रेम और अफेक्शन चैतन्य महाप्रभु का उस व्यक्ति के लिए होगा। हम भी हमसे कोई, हम किससे प्रीति रखते हैं तो उसके लिए भी प्रसाद की प्लेट बना के रखते हैं या राजभोग की प्लेट छुपा कर बाद में उसको डिलीवर करते हैं, नहीं? तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को रखते हैं उस धरोहर को पद्मा नदी के पास, और पद्मा नदी उसको संभाल नहीं पा रही थी। उसने चैतन्य महाप्रभु को पूछा, पद्मावती बोले, प्रभु करो निवेदन के मने जाने वो कारण नाम नरोत्तम। पद्मावती ने पूछा कि हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, केवड़े जाने वो कारण नरोत्तम, मैं कैसे जानूंगी कौन नरोत्तम दास ठाकुर है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जहर पर से तुम्हें अधिक उछालिबा, सही नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जहर पर से तुम्हें अधिक उछालिबा, जिस के स्पर्श से तुम अधिक आनंदित होगे और तुम्हारे अंदर बहुत सारी लहरें निकल पड़ेगी, तो तुम सोच समझो कि वो नरोत्तम है और फिर उसे कृष्ण प्रेम प्रदान करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के लिए वो प्रदान करते हैं, वो धरोहर कृष्ण प्रेम की बात रखते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक चिंता है। इस आंदोलन की। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि इस आंदोलन को कोई चला रहा है तो वो कौन है? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसकी अध्यक्षता रूप गोस्वामी कर रहे हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वास्तव में इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वापस आते हैं और केवल इसी विरह में रहते हैं, और कालांतर में फिर नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं जगन्नाथपुरी से कि हे नित्यानंदा, एकांत में उन्हें ले जाते हैं। और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि उन दोनों में क्या चर्चा हुई, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप बंगाल चले जाओ और वहां जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करो। तो उन्होंने कृष्ण नाम का प्रचार तो किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने एक और चीज ऐड की, गौरांगा। उन्होंने सबको कहा गौरांग का उच्चारण करो। वो मुझे क्या करेगा, जो व्यक्ति गौरांग के नामों का उच्चारण करेगा, उनके गुणों का वर्णन करेगा, वो व्यक्ति मुझे खरीद लेगा। नित्यानंद ठाकुर, नित्यानंद प्रभु कहते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु के पास वीरचंद्र प्रभु का आविर्भाव होता है। ये महान महान इस सेकंड जनरेशन था कृष्ण भावना का वितरण करने के लिए। वीरचंद्र प्रभु आदि अवतरित होते हैं या अपीयर होते हैं, और फिर यहाँ खेतुरी ग्राम में कृष्णानंद दत्त या मजुमदार और उनके भाई थे, जिनको कृष्णानंद दत्त को नरोत्तम दास ठाकुर पुत्र के रूप में एक प्रकार से प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये राजा थे और इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। रोज ये शालिग्राम शिला को तुलसी ऑफर करते थे। तो एक दिन एक आवाज सुनते हैं दिव्य ध्वनि कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा कि जिसके आने मात्र से सबकी जिह्वा कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगेगी। और चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को भी बोला था। लोकनाथ गोस्वामी जब अपनी युवा अवस्था में सब कुछ छोड़कर जब नवद्वीप आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आते ही सबसे पहले सेवा दी कि जाओ वृंदावन। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा, अरे जिनके लिए मैंने घर छोड़ा, जिनका संग प्राप्त करने के लिए, वो मुझे अपने से दूर भगा रहे हैं, वृंदावन भेज दिया। और उस समय कहा कि हे लोकनाथ, एक महान भक्त प्रकट होगा नरोत्तम, जिनको तुम आश्रय और दीक्षा प्रदान करना। वो ऐसा भक्त होगा कि जिसका कीर्तन सुनने मात्र से हर एक व्यक्ति का हृदय पिघलेगा, इवन पशु पक्षी या पत्थर या लकड़ी भी पिघलने लगेगी नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन से। तो लोकनाथ गोस्वामी उनकी इस आज्ञा को स्वीकार करके वृंदावन गमन करते हैं, और यहाँ खेतुरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य होता है, जिनकी माता का नाम था नारायणी देवी। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए हैं, लेकिन उनका मन सदैव चैतन्य महाप्रभु की ओर आकृष्ट था। चैतन्य लीला के अलावा उनका मन, उनका हृदय किसी और चीज में निमग्न नहीं होता था। इसलिए वो अपने स्कूल से आते थे तो दौड़ते हुए खेतुरी ग्राम में एक जो ब्राह्मण थे कृष्णदास, उनके घर जाते थे और घंटों घंटा चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना करते थे, उनके संगियों के बारे में सुना करते थे। और उनको ये अनुराग और ये भावना उनके हृदय में जागृत हो गई थी कि कब वो दिन आएगा, मैं ये सांसारिक जीवन को छोड़कर वृंदावन चला जाऊंगा, महाप्रभु के जो रत्न के समान भक्त हैं उनका संग लाभ मुझे प्राप्त होगा। तो ऐसी भावना में वो अपने दिन बिता रहे थे। और जब वो 12 साल के हुए तो घर वालों ने सोचा अभी विवाह की तैयारी करनी पड़ेगी, विवाह करना होगा नरोत्तम का। तो नरोत्तम ने सोचा ये उचित नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने महाप्रभु के बारे में सुना था कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पद्मा नदी के तट पर आए थे, तो दिन में कई बार पद्मा नदी के तट पर जाते थे और चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए रोया करते थे कि कब वो दिन होगा जब महाप्रभु और उनके भक्तों का संग मुझे प्राप्त होगा। तो फिर एक दिन जब वो 12 साल के थे और बहुत अधिक विरह महसूस कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आकर कहे थे, नरोत्तम गलती से विवाह बंधन में मत फंसना, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे अधिक कष्टदायक होगा, ये वचन नित्यानंद प्रभु कहते हैं। और सुबह जल्दी उठो और कल सुबह ही तुम पद्मा नदी में चले जाओ, जीवन की जो भी तुम्हें प्राप्त होना है वो वहां जाने मात्र से प्राप्त होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर को तो नींद नहीं आई उस स्वप्न के बाद। जैसे वो उठे और दौड़ते हुए पद्मा नदी में गए और उनको नित्यानंद प्रभु के वचनों का स्मरण हो रहा था। जैसे वो वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। उस पद्मा नदी के तट पर नित्यानंद प्रभु आदि का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना चरण पद्मा नदी के जल में डाले और डालने मात्र से सुनामी, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आने लगी। पद्मावती पद्मा नदी ने सोचा कि यही है वो नरोत्तम, और ये खड़ी हो गई पद्मा देवी साक्षात। अब उन्होंने कहा, नरोत्तम आपके लिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम मेरे पास छोड़ा है, अच्छा वह जल्दी आ गए हो, क्योंकि इसको संभालने का सामर्थ्य या शक्ति मुझ में नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम व्यक्ति को शांत रहने नहीं देता, कभी हंसाए कभी नाचाए, कराए क्रंदन, कभी हंसाता है रुलाता है नचाता है, अस्वस्थ कर देता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर को समझ में नहीं आ रहा था अभी ये कृष्ण प्रेम को ले कैसे। तो हमें केवल पता है कोई चीज लेनी है तो हाथ आगे करते हैं, तो उन्होंने भी अपने हाथ आगे किए और जो महान धरोहर चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ी थी उसको स्वीकार करते हैं। फिर उसको लेकर करें क्या? तो पद्मावती पूछती है, पद्मा नदी कहाँ रखोगे इसे? हाँ, वो कहते पी लो इसे। तो नरोत्तम दास ठाकुर उसका पान करते हैं, पान करते ही अभी वो नॉर्मल नहीं रहते, अभी उनका वर्ण परिवर्तन हो गया, सब चीजों में परिवर्तन हो गया, और जल में खड़े होकर नरोत्तम दास ठाकुर नाचने लगे, जोर जोर से गाने लगे, हाहाकार करने लगे और गौरांग के नाम का उच्चारण करने लगे, गौरांग। तो अभी माता पिता तो सुबह उठे, उनके अभी तो राजा का पुत्र है, राजकुमार है, उनका अलग से रूम था, बेटा कहा है, माता गई, उनको बचपन में नारू कहा जाता था, नारू, तो नारू तो घर में नहीं है। तो नारायणी देवी अपने पिता हस्बैंड को बताती है, सब लोग बाहर निकलते ढूंढने के लिए, ढूंढते ढूंढते वो पद्मा नदी के तट पर पहुंचते हैं। मैं एक डेढ़ महीने पहले नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से खेतुरी ग्राम गया था बांग्लादेश में, तो वो जो प्लेस है खेतुरी ग्राम, मतलब वहां जाकर नरोत्तम दास ठाकुर के स्मरण से भरा हुआ है। जो पद्मा नदी, अभी तो पद्मा नदी बड़ी विशाल है, सुंदर है, दोनों तटों पर खेत है, वृक्ष आदि है और वो जल है। तो जहां नरोत्तम दास ठाकुर गए थे तो उस स्थान को वहां अभी प्रेम तली कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रेम तली। वहां तीन तली है, तीन स्थलिया है, एक है भजन तली, एक उनकी आराधना स्थली है और एक है प्रेम तली, जहां उन्होंने प्रेम प्राप्त किया। वहां के गांव में किसी बस वाले को या रिक्शा वाले को दूर वाले सिटी, एक राजशाही एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पहुंचे थे, तो वहां हमने किसी रिक्शा वाले को बोला हमें खेतुरी जाना है, तो उन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके, तो किसी ने हमें कहा कि खेतुरी मत बोलो, उनको बोलो प्रेम तली जाना है। तो जब प्रेम तली कहा तो सीधा पहुंचा दिया वहां नरोत्तम दास ठाकुर के उस स्थान में। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने जिस स्थान में प्रेम प्राप्त किया वो प्रेम तली में नरोत्तम दास ठाकुर नाचने लगे, गाने लगे, गौरांग का उच्चारण करने लगे, और वहां एक तमाल वृक्ष है उसके नीचे आकर बैठकर केवल गौरांग का स्मरण करने लगे। माता पिता वहां आते हैं और आते ही देख, माता दूर से देखती कि ये बच्चा जाना पहचाना लगता है, लेकिन इसका वर्ण बदल गया है, क्योंकि वो श्याम वर्ण के थे, लेकिन अभी जैसे ही उन्होंने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया, पी लिया, अभी वो महाप्रभु के समान गौर वर्ण के हो गए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर को कहा जाता है उनका जो शरीर है वो सर्वसाधारण नहीं है, गौर प्रेम तनु, गौरांग महाप्रभु के प्रेम से निर्मित उनका दिव्य देह है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को देखा कि अरे, और उनकी माता कहने लगी, पहले से तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। जैसे कई बार जो ब्रह्मचारी भक्त होते हैं उनके माता पिता भी कहते, बेटा पहले से बहुत अच्छे लग रहे हो, बड़े खुश हो, चमक रहे हो। तो वैसे ही हुआ, तो फिर उनको घर ले गए और एक गौरांग गौरांग उच्चारण कर रहे थे। फिर माता पिता ने बिठाया और पूछा, बताओ क्या समस्या है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन एक चीज मैंने देखी, एक सुवर्ण वर्ण का बालक मेरे हृदय में घुस गया है, और जब से वो घुसा है तब से मैं केवल कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगा हूं।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
तो नरोत्तम दास ठाकुर की विशेषता को जब देखा तो उनकी माता को लगा किसी देवता ने इसके ऊपर अधिकार जमा लिया है। भूत पिशाच अकेला बच्चा नदी में गया था, तो फिर एक ओझा को बुलाया गया। तो जब ओझा जी आए वहां भूत उतारने के लिए, तो नरोत्तम दास ठाकुर की दशा को कौन पहचान सकता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा वेग्य ना बुझा, तो नरोत्तम दास ठाकुर की उस स्थिति को कोई पहचान नहीं पा रहा था। वो ओझा आया और उन्होंने कहा, किसी देवता ने अधिकार जमा लिया है और इसको एक विशेष व्याधि हो गई है, इसके लिए इसको सूप पिलाना पड़ेगा, और वो भी जो जाकल है सीआर के ब्रेन से बना हुआ। जैसे प्रभुपाद बीमार हो गए थे, तो मुर्गी का सूप डॉक्टर ने बोला था बचपन में। तो डॉक्टर जब मुर्गी का सूप लेके आए, तो प्रभुपाद तो छोटे बालक थे, अभय, उनके पिता तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन माता थोड़ी सी चाह रही थी। तो जैसे ही पिलाया थोड़ा तो वॉमिटिंग करने लगे, तो गौर मोहंडे कह दे, बस अभी हो गया और कुछ नहीं। तो वैसे ही ये जब डिस्कशन हो रहा था इनके सामने, नरोत्तम के सामने, तो उन्होंने कहा, आप हे पिताश्री, आप मेरी बीमारी को बढ़ाना चाहते हो, एक पशु की हत्या करके मुझे ठीक करना चाहते हो, इससे मैं ठीक नहीं होऊंगा बल्कि मेरी बीमारी बढ़ेगी, और मेरी एक ही दवा है, और वो दवा क्या है, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। सारी समस्याओं का समाधान कहां है, वृंदावन धाम के। उन्होंने कहा, आप मुझे यहां से जाने दो, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर भालो ना लागे ये संसार, अभी वो संसार अच्छा नहीं लग रहा था, कृष्ण के संसार में प्रवेश करना चाह रहे थे जहां आनंद में वैष्णवों का संग है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर योजना बनाते थे कि कैसे जाओ। तो जो रियली भागना चाहता है, भगवान क्या करते हैं उसको, ददामि बुद्धि योगम, सही समय पर बुद्धि देते हैं, क्योंकि ये परंपरा ही भागने वालों की है। जितने भी आचार्यों को देखो, हर कोई भागकर आया हुआ है। नरोत्तम दास ठाकुर तो भागे ही भागे, जितने भी ठाकुर हैं, इवन रघुनाथ दास गोस्वामी, और इनके लिए, क्योंकि इन्होंने सारे आचार्यों के बारे में पढ़ा था, सुना था, तो इनको रघुनाथ दास गोस्वामी का आइडियल उदाहरण लगता था, क्योंकि वो भागने में एक्सपर्ट थे। तो इवन चैतन्य महाप्रभु भी भागे हैं, और नित्यानंद प्रभु की तो सोचो ही नहीं, वो तो जब जब उनकी आयु 12 साल की हुई तो एक सन्यासी उनके घर में आया तो ये आनंद से नाचने लगे नित्यानंद प्रभु। क्यों? क्योंकि वो सन्यासी के साथ जाने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। और सन्यासी जब घर में आया तो उनके पिता ने पिता के साथ कृष्ण कथा आदि में रात्रि बिताई और हड़ाई पंडित ने कहा, ओ सन्यासी ठाकुर, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? कहते, मैं तो बहुत सेवा चाहता हूं, अभी तो मैं वृद्ध हो गया हूं, सन्यासी हो, मुझे एक ब्रह्मचारी सेवक चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आपका ये जो पुत्र है ये मेरे लिए उचित है, तो अभी इनके लिए तो बहुत कष्टदायक वचन थे। अपनी पत्नी पद्मावती के पास जाते हड़ाई पंडित, कहते देखो वो सन्यासी ठाकुर बेटे को मांग रहा है। तो पद्मावती कहते, धर्म के अनुसार जो उचित है वही करो, एक वैष्णव को संतुष्ट करना चाहिए सेवा के द्वारा। तो वो बोलते हैं कि जब विश्वामित्र मुनि आए थे दशरथ के पास राम की याचना करने के लिए, तो राम को भेजा गया था, तो अभी आप क्या कर सकते हो, इनको दे सकते हो। तो जब नित्यानंद प्रभु के समय में सब लोग दुखी थे, सारा एक चक्र ग्राम के निवासी रो रहे थे, और सुबह का जब समय हुआ तो सन्यासी ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ा और वो तेज गति से चलने लगे, पीछे भी नहीं मुड़ के देख रहे थे। लेकिन उस सन्यासी ने जाने से पहले एक कृष्ण के विग्रह, मुरलीधर कृष्ण, वो छोटे से विग्रह पद्मावती को दिए थे। आज भी आप एक चक्रा में जाते हो और उनका दर्शन करते हो। तो जब उनको विग्रह दिया है तो पद्मावती उनकी जो माता है नित्यानंद प्रभु की, वो देख रही थी और साक्षात नित्यानंद प्रभु उनको दिखाई दे रहे थे उस विग्रह में। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु आनंद में नाच रहे थे, एक चक्रा के हर निवासी बाहर आ गया और मूर्ति के समान खड़ा था, केवल एक ही चीज हिल रही थी और वो थी आंखों से आंसू और दूसरे नित्यानंद प्रभु। तो ये हड़ाई पंडित सोचते हैं, हम सब इतने दुखी हैं, ये इतना नाच क्यों रहा है, इतना सुखी क्यों है। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, वो सुखी है, तो वो भी भागना चाह रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी सोचा वृंदावन जाना है। तो एक दिन एक जो मुस्लिम शासक कॉल आता है तो उनके संदेशवाहक आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर उनके साथ जाते हैं। और उस रात्रि में वहां जब एक रात्रि में जाते जाते सो जाते एक स्थान में, तो नरोत्तम दास ठाकुर उठ जाते हैं, बल्कि उनकी माता बहुत दुखी थी, कभी भी निकल सकता है बेटा, भाग सकता है। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर उठे, उन्होंने देखा कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, तो ऐसी दौड़ लगाई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो एक स्थान आया, एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, थक गए थे और सो गए, और सोते ही फिर से एक सुवर्ण वर्ण का बालक, अभी उनको ये सुवर्ण वर्ण का बालक पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक वो कहां तक नहीं पहुंचेंगे, वृंदावन। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी कहते हैं, चैतन्य चंद्रेर बातुल हैया चे जहारे, जो चैतन्य चंद्र का पागल हो गया है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। तो जब ये सो रहे थे, कुछ भी नहीं खाया था, कई दिन बीते, तो नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में एक सुवर्ण वर्ण का बालक आता है और एक पॉट लेकर आता है दूध का, कहता है आप पी लो इसे, और अप्रकट हो जाता है। और उसी के बीच में फिर रूप सनातन स्वप्न में आते हैं, कहते वो साक्षात चैतन्य देव थे जो आपके स्वप्न में आए थे, दूध पी लो ताकि शक्ति आएगी, कहा जाने के लिए वृंदावन। तो जैसे उसका पान करते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर जाते जाते उनको याद आती है चैतन्य महाप्रभु की, और फिर एक स्थान सामने उस रूट में पड़ता है वाराणसी। तो शास्त्र कहते हैं कि रूट में यदि विशेष स्पिरिचुअल स्थान आता है तो उसे जरूर विजिट करना चाहिए, यदि हम उसे अवॉइड करते हैं तो हम अपराध मोल लेते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर वाराणसी में जाते हैं, जहां चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती आदि का उद्धार किया था। फिर वहां से इलाहाबाद जाते हैं, वहां से रूप गोस्वामी को जहां महाप्रभु ने शिक्षा दी थी, फिर वहां से वो मथुरा आते हैं। और जब ये मथुरा पहुंचते हैं, विश्राम घाट पर विश्राम करते हैं। सारे वैष्णव का वो स्पॉट है, जो भी बंगाल ओडिशा से भाग के गया है वो जाकर विश्राम कहां करता है, सबसे पहले विश्राम घाट में। तो यहां जीव गोस्वामी थे, रूप सनातन अप्रकट हो गए थे, जिनके बारे में सुनकर वो दुखी हो गए कि ऐसे महान आचार्य उनका संग ना लाभ नहीं मुझे मिला। फिर नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में रूप सनातन स्वप्न में आकर जीव गोस्वामी के कहते, कल सुबह किसी को भेजो, एक महान राजकुमार नरोत्तम आ रहा है उसका स्वागत करने के लिए, उसको लाने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर को वहां से एक डिवोटी ले जाता है वृंदावन। अब वृंदावन जाते तो हर डिवोटी जो भी गया है उनका ये रूट फिक्स है, विश्राम घाट से सीधा गोविंद देव टेम्पल, जो बड़ा टेम्पल था ना, वहां जाकर दर्शन करना और दर्शन करते मूर्छित हो जाना। बहुत ज्यादा कई सारी चीजें हर वैष्णव आचार्य के जीवन में क्या है, सिमिलर है, दर्शन करते मूर्छित हो जाना, डिवोटी मिलते उसका आलिंगन करना और उनकी स्तुति करना और विनम्रता की भावना का प्रदर्शन करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां मूर्छित हो गए, तो ये जीव गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी और सारे डिवोटीज आ गए ऐसे विशेष डिवोटी का स्वागत करने के लिए और देखने के लिए। और फिर लोकनाथ गोस्वामी के वो चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी तो बहुत विनम्र थे, वो नहीं चाह रहे थे किसी को दीक्षा और शिक्षा देना। हाँ, उन्होंने कहा मैं अपने आप का उद्धार नहीं कर पा रहा हूं, हाँ, ये उनका विनम्रता का भाव था। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, बल्कि लोकनाथ गोस्वामी जब मिले और उस गोविंद देव के दर्शन के बाद उनको ले गए अपने कुटिया में, तो एक साथ जब प्रसाद पा रहे थे तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, मैं तो आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं, आप मुझे अपने चरणों में रखिए। लोकनाथ गोस्वामी कहते असंभव है। वो कहते हैं कि अरे तुम्हारे हृदय में पहले से ही कृष्ण प्रेम है, तुम्हें कोई दीक्षा शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगते हैं, कहते हैं कि देखो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं, उनका हर पार्षद आध्यात्मिक गुरु का शेल्टर ग्रहण करता है और मैं चाहता हूं आपका आश्रय ग्रहण करना। और कैसे, क्योंकि एक शिष्य के लिए एक भक्त के लिए उसके गुरु का जो आदेश है लाइफ एंड सोल है, यदि आप मुझे आश्रय ग्रहण नहीं करोगे तो मेरे लिए कोई आदेश नहीं होगा, मैं क्या करूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर गिड़गिड़ाते हैं, उनसे याचना करते हैं दीक्षा आदि के लिए। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं देखते हैं, हाँ, क्योंकि एक साल एक शिष्य को इंतजार करना चाहिए और एक गुरु को भी परखना चाहिए अपने होने वाले शिष्य को। फिर कहते चांटिंग शुरू करो, तो लोकनाथ गोस्वामी उनसे माला शुरू करवाते हैं। और फिर हम वो फेमस उस लीला को सुनते हैं कि किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर गिड़गिड़ाते हैं और उनकी जो सेवा करते हैं। जब लोकनाथ गोस्वामी सुबह सुबह मल त्यागने के लिए जाते थे तो नरोत्तम दास ठाकुर जो राजकुमार थे रोज जाकर उस स्थान को झाड़ू से साफ करते थे, फ्रेश मिट्टी वहां रखते थे और वो जो झाड़ू है उसको अपने छाती में लगाते हुए रोया करते थे कि हे लोकनाथ, हे गुरुदेव, कब आप मुझे आश्रय प्रदान करेंगे, मेरे जैसे नगण्य शूद्र तुच्छ व्यक्ति को अपना दास स्वीकार करेंगे। अब तो देखा बहुत दिन बीते, लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कौन ये सेवा करता है मेरे। एक दिन एक वृक्ष के पीछे छुप कर देखते हैं लोग, ये नरोत्तम है राजकुमार। तो फिर उनको दीक्षा आदि प्रदान करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जिनका जो जीवन है इतना ग्लोरियस है कि इनका वर्णन प्रेम विलास में करते हुए नित्यानंद दास लिखते हैं कि कोई व्यक्ति केवल नरोत्तम दास ठाकुर के इन दिव्य कार्यकलापों को सुनता है तो सबसे पहले उसकी जो दृढ़ श्रद्धा है चैतन्य महाप्रभु के लिए हो जाती है, महाप्रभु का वो प्रेमी बनने लगता है। और दूसरा, जो व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के इस दिव्य कार्यकलापों को मेडिटेट करता है, सुनता है, चर्चा करता है, उसका अनुराग, उसका जो टेस्ट है हरि नाम के लिए बढ़ता है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के इतने विशद लीलाएं हैं और फाइनली वो अपना देह त्याग करते हैं। और एक प्रकार से जब उन्होंने बहुत सारे राजाओं को, ब्राह्मणों को दीक्षा दी और हजारों हजारों लोगों को भक्त बनाया, उनका कंट्रीब्यूशन था पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। और जब गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में उन्होंने सोचा वल्लभी कांत और गौरांग महाप्रभु के विग्रहों की स्थापना उन्होंने की खेतुरी में, और उन्होंने सोचा इनकी स्थापना के लिए श्रीनिवास आचार्य आने चाहिए, तो रघुनंदन ठाकुर, जानवा माता, रामचंद्र कविराज, गोविंद कविराज सारे भक्त आए। और जब महाअभिषेक आदि हुआ तो सुबह का समय आया, सबने कहा कि नरोत्तम आप अभी कीर्तन करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सारे वैष्णव प्रणाम किया कीर्तन करने से पूर्व, जानवा माता के पास गए, उनसे आशीर्वाद लिया श्रीनिवास आचार्य, और सबके उस वचन को सुनकर वो बैठ गए और चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हुए कृष्ण कीर्तन करने लगे, कृष्ण के नामों का गान करने लगे। और जब वो गा रहे थे तो इतना उनका मधुर गान था कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये जो पंच तत्व है वो अपने आप को रोक नहीं पाए, सारे अपने संगियों के साथ, पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु उस कीर्तन में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही वो प्रकट होते हैं हर एक व्यक्ति नाचने लगता है, रोने लगता है, ये क्या ऐसा कीर्तन जो किसको प्रकट करता है, चैतन्य देव जो कीर्तन के पिता है, संकीर्तनय का पितरो। तो ऐसे महाप्रभु प्रकट होते हैं और अचानक काफी समय बीतता है, फिर वो अप्रकट हो जाते हैं, फिर से भक्त दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया था चैतन्य महाप्रभु के इस नाम संकीर्तन का कि जब एक समय आया उन्होंने सोचा अभी मैं अपना भजन भी मुझे करना है। तो उन्होंने एक प्रेम तली, भजन तली नाम का स्थान क्रिएट किया वृंदावन के समान एक वृक्ष के नीचे, आज भी है, एक सुंदर सा ऊंचा स्थान है। तो वहां वो बैठकर कीर्तन करने लगे, कुटिया बनाई जिसमें वो दो डिवोटीज हमेशा रहते थे, रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर। तो उस कुटिया में निवास करते करते एक दिन वृंदावन से श्रीनिवास आचार्य का लेटर आता है कि रामचंद्र कविराज को जल्दी भेजो वृंदावन। वो लेटर पढ़ते ही नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगते हैं कि जो मुझे सबसे अधिक आनंद देने वाला एसोसिएशन है वो मुझसे जा रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब पूछते रामानंद राय को, हे रामानंद बताओ इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय कहते हैं भक्तों का संग से दूर हो जाना, भक्तों का संग लाभ न प्राप्त होना, इससे बढ़कर दुख इस संसार में कुछ और नहीं है। तो फिर रामचंद्र कविराज तो जाते हैं वृंदावन, तो फिर ऐसी स्थिति होती है नरोत्तम दास ठाकुर के कि कोई सोच नहीं सकता, उनके जीवा से सारे विरह गीत निकलने लगते हैं जिनको हम अभी पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, उच्चारण करते हैं। और फिर एक दिन पत्र आता है फिर से, क्या पत्र था, बाकी तो उन्होंने सुना था कि बाकी डिवोटी जब ये रामचंद्र कविराज जा रहे थे तो इनको भी कहते थे चलो वृंदावन, उन्होंने कहा वृंदावन जाकर क्या करो, वहां वृंदावन के जो असली रत्न है रूप सनातन जीव ये सारे वैष्णव तो बचे ही नहीं, मैं क्या करूं, वहां जाकर अधिक मुझे कष्ट होगा, उस विरह को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहां ही रहने दो। फिर रामचंद्र कविराज जाते हैं और फिर लेटर आता है एक दिन कि इस संसार से श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज भी चल पड़े हैं। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर के दुख की कोई सीमा नहीं होती, फिर वो सॉन्ग एक निकलता है जय आलिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, कि ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए जो महान प्रेम की धरोहर को ले आए थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर फाइनली अपना इन वैष्णवों के विरह में, हाँ इसलिए है देहूती माता को कपिल देव कहते हैं कि भक्तों के प्रति आसक्ति है वह हमारा मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के दरवाजे को खोल देता है। भौतिक व्यक्ति के प्रति आसक्ति तमो द्वारम, वह हमारे नरक द्वार में हमें प्रवेश कराता है। तो इसलिए हमें वैष्णव संग से आसक्त होना चाहिए, भक्तों का संग हमें ऑक्सीजन के समान महसूस होना चाहिए कि जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम छटपटाने लगते हैं, मास्क लगाना पड़ता है, वेंटिलेटर पर रखना होता है, तो वैसे ही हमें महसूस होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वैष्णव संघ को हम टॉलरेट करते हैं, आनंद नहीं महसूस करते भक्तों के संग में। हम भक्त सुख देते, भगवान के भक्तों का संग ही सर्वाधिक सुखमय है और सुख का कारण है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, जनमे जनमे है यही अभिलाष, मेरी यही अभिलाषा है कि ऐसे तांदेर पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करने का थोड़ा सा मुझे ये मिले, मौका मिले, और महाप्रभु के जो भक्त हैं उनके संग का संग में निवास करूं जन्म जन्म तक। तो इस भावना में, इस विरह भाव में नरोत्तम दास ठाकुर शरीर छोड़ते हैं गांभीला में, गंगा नदी के तट पर। वो भी बहुत विशेष बड़ी लीला है, वो गंगा नदी में प्रवेश करते हैं, दोनों तट पर डिवोटीज जोर से कीर्तन करते हैं, गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण उनके जो दो शिष्य थे उनको नरोत्तम दास ठाकुर कहते जल से नहलाओ मुझे, हाँ जैसे वो हाथ से जल उनके बॉडी पर डालते हैं तो उनका जो गौरव प्रेममय तनु है वो पिघलने लगता है, और पिघल कर उनके सामने क्या होता है, मिल्क दूध में परिवर्तित हो जाता है, और सारे वैष्णवों के सामने ऐसे महान जो आचार्य है वो अप्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर बहुत प्रिय है। प्रभुपाद को पूछा यमुना देवी दासी ने, प्रभुपाद आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, लंदन में दोपहर के समय में प्रभुपाद हारमोनियम लेकर गाने की तैयारी कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने पूछा तुम्हारा बताओ, तो उसने कहा शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु का। प्रभुपाद कहते मेरा सॉन्ग है नरोत्तम दास ठाकुर का, और वो है हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषखाइनु। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते ऐसे सॉन्ग गाने में अनुराग होना चाहिए, ऐसे सॉन्ग गाओ ये आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या है, हेल्दी है। तो आज के दिन नरोत्तम दास ठाकुर का स्मरण करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, भक्तों के संग में चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम भी चैतन्य देव के चरणों में उनके गुणगान आदि में अनुराग प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के पदित पावन श्रील प्रभुपाद के समवेत गौर भक्त वृंद के हिताय गौर प्रेमानंदे।